ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्ये।
आज परम सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत का सप्ताह हो रहा है, जिसका आयोजन बॉम्बे वालों ने सबने मिल करके किया है और इसका जो श्रवण करेगा मन से, ऐसा नहीं कि इस कान से सुने इस कान से निकाल दे, तब तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। वो पृथ्वी के समान सहिष्णु हो जाएगा। जितने भी कष्ट कोई आएगा उसके लिए किसी से रोएगा, घिघियाएगा या कंप्लेन नहीं करेगा। वृक्षों को काटने से क्या वो रोते चिल्लाते हैं या कहते हैं कि हमको मत काटो? मांगने पर फल देते हैं, पत्थर मारने पर भी फल ऊपर से देते हैं। भागवत का सुनने वाला है, ऐसा ही होकर के भागवत सुन करके उसको कृष्ण प्रेम होगा। यदि ये चीजें नहीं जाएंगी अनर्थ, तब तक भगवत भक्ति उसे नहीं होगी। इसलिए सुनो तो परीक्षित महाराज जी जैसा, सुनो तो धुंधकारी जैसा गोकर्ण ने कहा, और सुनो तो सनत कुमार ने जैसा कहा, और नारद जी और भक्ति देवी जी ने सुना। आपने सुना है जो भक्ति जी नौजवान हो गई, उनके लड़के ज्ञान वैराग्यवाद भी परम तरुण हो गए। इसलिए ऐसा होना चाहिए। यह भागवत पुराण कहाँ से आरंभ हुआ इसको बतला रहा हूँ। जैसा कि भागवत में लिखा है, जब प्रलय के महाप्रलय के बाद में ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से निकले और ऊपर में जब गए, देखा जब चारों तरफ जल ही जल है, कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? उस समय तप 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 शब्द हुआ। ये भगवान की वाणी थी। ओ, मुझे तपस्या के लिए इंगित दे रहे हैं। बस अपनी आयु से 1000 वर्ष और हम लोगों की उम्र से तो करोड़ों वर्ष तपस्या की, भगवान की आराधना की, और तब भगवान प्रकट हुए, अपना धाम दिखलाया गोलोक का, और फिर समाधि में ही इनको इस श्रीमद् भागवत की जो मूल है 4 श्लोकों में उसको वर्णन किया। जैसा मैं हूँ, जिस प्रकार मेरा रूप नाम गुण है, मेरी कृपा से ग्रहण करो। मेरे पहले कुछ नहीं था, जब जगत नहीं रहेगा तो भी मैं रहूँगा, और जब है तब मैं हूँ। मैं त्रिकाल सत्य हूँ। जो मेरे अतिरिक्त अर्थात जो भगवान के रूप में नहीं है, जैसे वृंदावन गोलोक में माया नहीं है, जो नहीं है और यहाँ दिख पड़ती है और उसके प्रभाव से हम अब ये होते हैं, ये माया है। माया 2 प्रकार की है, एक आभास एक तम। एक है जैसे सूरज की रोशनी में अणु छोटे छोटे होते हैं, ऐसे ये जीवात्माएं हैं। और एक ये जड़ जगत है, नश्वर है, स्वप्न की भांति है, आज है कल नहीं है। जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। ये मनुष्य जन्म किस लिए है? भगवत भजन के लिए। लोग संसारिक विषयों में रम जाते हैं, भूल जाते हैं भगवान का भजन करना। किंतु भगवान ने यथार्थतः यह जन्म दिया है भगवत भजन के लिए। इसको गुरु के समीप जाकर के श्रवण करो और फिर इसका प्रचार भी करो। इस प्रकार से भगवान ने चार श्लोकों में उनको ये दिया। ब्रह्मा जी ने कहा जी आप कृपा करके हमें ऐसा भी मन न हो जाए कि मैं जगत का सृष्टा हूं, ऐसा हो सकता है, इसलिए कृपा करें जी हमको कभी अभिमान न हो। फिर तब उन्होंने ये चतुर्श्लोक सुनाए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये चार श्लोक दिए, नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने नारद की कृपा से समाधि में सारे भागवत को देखा और तब जगत के कल्याण के लिए उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया और निवृत्ति परायण अपने पुत्र को जो जन्म से ही घर से निकल गए, संस्कार भी नहीं हुआ, और उनको कहा उन्होंने समाधि योग में इसको दर्शन किया। भक्ति योगेन सम्यक प्रणिहिते अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच जद अपश्यत। उन्होंने पूर्ण पुरुष कृष्ण को देखा, उन्होंने नंद बाबा, जसोदा, जसोदा मैया और सब बाल बालों को उनके साथ में देखा, गोपियों को भी देखा, उन्होंने रासस्थली को रास को भी देखा। उसके बाद की जब तक द्वारका में रहे तब तक की सारी लीलाओं का उन्होंने दर्शन किया और तब लोगों के कल्याण के लिए लिखा। सुखदेव को आकर्षण करके उनको पढ़ाया। फिर सुखदेव जी ने परीक्षित की सभा में, जैसे आज ये सभा है, 88,000 ऋषि लोग, गृहस्थ लोग, ज्ञानी और योगी सभी लोग उनकी सभा में उपस्थित हुए और जिसने सुना उसको भक्ति हुई और संसार से मुक्त हो गए। ये भागवत श्रवण करने का ये फल है। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम जद वैष्णवानाम प्रियम। ये वैष्णवों का प्रिय है, मायावादियों का, द्वैतवादियों का नहीं, ब्रह्मवादियों का नहीं, वैष्णवों के लिए है। इसमें परमहंस, परमहंस माने सुखदेव गोस्वामी जैसे, नारद जैसे, सनत कुमार जैसे परमहंस लोगों का ये है, इसलिए इसको परमहंसी संघता कहते हैं, मुक्त पुरुषों की। और इसके श्रवण से भक्ति होती है। कैसी भक्ति? उसके साथ साथ में ज्ञान, तत्व ज्ञान माने कृष्ण तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, माया तत्व क्या है, इसका सब ज्ञान होता है। और परम निर्मला भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है। इसके श्रवण से यदि हम लोग इसका श्रवण करें निश्चित रूप में भक्ति होगी। किंतु उस रूप में जिस रूप में कहा परीक्षित ने जिस रूप में सुना, ऐसे आप लोग भी सारे संसार की चिंता छोड़ करके इसके एक एक अक्षर को रस समझ करके पान करें और फिर इसका आचरण करें। यहां सुना और हमारी लौकिक उन्नति हो इसके लिए सुनेंगे तो भी पूरा हो जाएगा। अकाम सर्व काम मोक्ष काम उदार दीप्त ब्रेन भक्ति जोगेन जजेत पुरुषम परम। चाहे सब कामनाओं को करने वाला हो, कोई काम नहीं है ऐसा व्यक्ति, अथवा जोगी हो अथवा परम भक्त हो, सबके लिए श्रीमद् भागवत सुनने से जो जो जैसा चाहेगा, ये वंशा कल्पतरु कल्पतरु है, उसका फल को पूरा करेगा। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा, ऐसा ये श्रीमद्भागवत ग्रंथ है। श्रीमद्भागवतम सर्व वेदांत सार है, समस्त वेदांतों का सार है। क्या है? अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम, समस्त श्रुतियों का सार ब्रह्म सूत्र है, उसका सार ये श्रीमद् भागवत है। महाभारत का तो तात्पर्य इसमें निहित है, और गायत्री ब्रह्म गायत्री है उसका भी भाष्य है ये। वेदार्थ परिवर्णित, वेदों के अर्थ को विस्तार करना। यदि कोई इसने सुना और रस से सुना तो और कोई ग्रंथ सुनने की उसको आवश्यकता नहीं होगी। इसके श्रोता भी कम है, वक्ता भी कम है। वक्ता भी लोभी हैं, अधिकांश वृंदावन में बड़े बड़े वक्ता हैं, लोभी हैं। देखेंगे ये आरती में कितना पैसा आया, उनकी कथा सुनने से नहीं होगा, उसमें धन जन ये संसारिक कामनाएं आएंगी। और जो इन सबसे अतीत है, जो ये नहीं चाहता, भगवान की भक्ति ही केवल मात्र चाहता है, वैसा वक्ता हो और श्रोता भी परीक्षित महाराज के जैसा, श्रवण किया क्या हुआ, परम पद को पहुंच गए। सांप काटने के पहले ही चले गए और उसके निर्जीव शरीर को सांप ने काटा, वो जल गया। गोकर्ण ने कथा सुनाई, उस सभा में जितने लोग थे उसमें धुंधुकारी की का उद्धार हुआ, वो चला गया बैकुंठ, और बाकी सब लोग रहे। तो गोकर्ण जी ने पूछा भगवान से, धुंधुकारी भी सुना और सब लोग जितने थे सभा में उन्होंने भी सुना, उनका कुछ नहीं हुआ क्यों? इसको तो सबको होना चाहिए, जैसे इस सभा में है सभी को नहीं होगा, सभी संसार से उद्धार लाभ करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं। जो सब कामनाओं को छोड़ करके प्रेमा भक्ति के लिए इस भागवत को श्रवण करता है, सब इच्छाओं को दूर करके, तब वो परागति लाभ होती है, संसार से उद्धार हो जाता है, कृष्ण की सेवा को प्राप्त हो जाता है। परीक्षित महाराज जी सुनने के बाद ने अपनी मैया को सुनाया, जिसको बृहद भगवतामृत कहते हैं। उसमें परीक्षित जी गोपी भाव से वृंदावन में पहुंचे। तो आप लोग भी यदि सुनेंगे तो श्रीमद् भागवत के सुनने का फल है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति कैसे? जैसे गोपियों को प्रेमा भक्ति हुई, जिस प्रेम के कारण कृष्ण को वशीभूत कर दिया, और उसमें भी अनाराधितो राधा जी राज छोड़ करके चलेंगे तो कृष्ण भी पीछे पीछे चले गए। राधा जी की भक्ति जो है प्रेम सर्वोत्तम है। उस राधा जी की दासी होने का अभिलाष यदि हृदय में जन्मा तो सुनो सत जो जी ये भागवत हमारा सुनना सार्थक हो गया। इसके द्वारा धन मिल गया, बेटा बेटी का विवाह हो गया, दरिद्रता दूर हो गई। हम जो चाहते हैं संसार की चीजें मिल गई तो मरने के बाद तो सभी छूट जाएगा, इसलिए ऐसी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल मात्र भगवान के चरणों में भक्ति हो, इस भाव से आप लोग 7 दिन यहाँ पर कथा होगी, आप लोग श्रवण करेंगे। मैं यहीं तक वक्तव्य समाप्त करता हूँ, अभी आपको आगे आरम्भ करो। नारद जी का उपाख्यान हो गया, नारद व्यास बोलो, आरम्भ करो।
चंद्राय राधिकाय हितकाराय कृष्णाय कृष्णवर्गाय तद्वर्गाय नमो नमः। अभी अभी हम सबकी समझ से गुरु पाद सान्निध्य प्राप्त हुआ, अपने वचनामृत के द्वारा उन्होंने हम लोगों को मधुर उपदेश दिया, और श्रीमद्भागवत कथा के प्रसंग में श्री नारद जी की कथा सुनाने के लिए मुझे आज्ञा दी। अभी आप सबके सामने कुछ कथाओं को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस समय व्यास जी के आश्रम में अभी व्यास जी की कथा भी हो गई, क्योंकि व्यास जी के आश्रम में नारद जी उपस्थित हुए। जब श्री व्यास जी को समस्त वेद पुराण इतिहास यानी महाभारत की रचना ये समस्त कर लिए जाने पर उनके मन में स्थिति नहीं, अतिरिक्त मन नहीं, कुछ सोच विचार में बैठे ऐसी स्थिति नहीं। जब नारद जी महाराज उपस्थित हुए, व्यास जी के गुरु श्री व्यास जी ने यथावत की पूजा अर्चना आसन में स्थिर पूर्वक जब बैठे, तब श्री नारद जी ने पूछा, हे पराशर नंदन, जगत को ज्ञान देने वाले, जगत की आंखों को खोलने वाले, अपने समस्त प्रकार की जिज्ञासाएं पूरी कर रही, वेदांत यानी उपनिषद, वेदांत सूत्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण, इस प्रकार पुराणों का वर्णन किया। फिर स्त्री सूत्र दिए मंत्रणा, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, साधारण व्यक्ति जो अनपढ़ है, उन सब के लिए आपने महाभारत की भी रचना कर दी। और महाभारत ऐसे ऐसे नहीं, उसमें भगवान श्री कृष्ण का उपदेश भी आपने वर्णन किया जो कि श्रीमद् भगवद गीता है। ग्राम कथा में वादे कृष्ण पति गिरिया, ग्रामीण कथाओं के अनुवाद के द्वारा भगवान कृष्ण ने जैसे चित्र रचा सबका मन उन्हीं में लगा। इस प्रकार ऐसे कौशल से ही आपने महाभारत की रचना, कोई शास्त्रीय ग्रंथ पढ़ना न भी चाहे फिर महाभारत पढ़ने के लिए सब लोग दौड़े सुनने, ऐसे कौशल से आपने बनाया सारी जिज्ञासाएं पूरी कर। फिर भी आपके मन में कुछ सोच विचार, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, क्या बात है, आपको कौन सी कमी है, इस विषय को जैसे पूछ। उस समय से व्यास जी ने कहा, हे गुरुदेव, सूर्य संसार को प्रकाश देता है पर वो बाहरी प्रकाश किसी के हृदय को प्रकाशित नहीं कर सकता, परंतु आप हमारे गुरु पाद पर बैठे इसलिए आप बाहर और भीतर दोनों को ही प्रकाशित करते हैं, समस्त जीवों के अज्ञान अंधकार को दूर किए, भगवान की सेवा व्रत नियम आपको संपूर्ण अनुभव है, हमारे मन में कौन सा अभाव है, क्या दुख है, क्या कष्ट है, कौन सी कमी है, यह आप भले भांति जानते हैं, कृपया आप ही हमें बताएं हमारा दुख का कारण क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। उस समय श्री नारद जी ने कहा, हे पराशर नंदन, हे व्यास जी, भवतानुदितं प्रायोजसो भगवतो मलम, आपने संसार के लोगों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चतुर्वर्ग पुरुषार्थ की बात कही, परंतु उसके द्वारा कभी कोई तृप्त नहीं हो सका न हो पाएगा। भगवान के अमर जस गुण गाथा, भक्ति का विश्लेषण, भक्तों का महान चरित्र, ये सब तो आपने किया नहीं। कहीं कहीं पुराणों में भगवान की कथाएं कुछ मात्रा में कही है, की सिद्धि में ही वहां पर रोक दिया। कोई भी व्यक्ति सांसारिक फल को पा करके कभी सुखी नहीं होता है। यह भौतिक वस्तु है, इसके द्वारा न तो हम चिर सुखी हो सकेंगे न ही चिर शांति हमें मिलेगा। इसलिए वास्तविक कल्याण का मार्ग तो वही है भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन, उनके गुणों का वर्णन। तद्वार्य विसर्गो जनता से विप्लवो, भगवान की कथाएं कैसे थी कीर्तन मोटी सर से, कोई मधुर गला भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे जैसे तैसे भगवान का नाम लेता है, उससे समस्त जीवों का कल्याण, समस्त प्राणियों का कल्याण होता है। मान के साथ में बड़े बड़े संगीतकार संगीत गाते हैं, पर जिसमें भगवान का नाम नहीं उससे कोई कल्याण नहीं, कोई भी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं जो संत पुरुष होते हैं वे कभी उन कथाओं में उन संगीतों में रमते नहीं, न निर्मलते उसी छाया मानस सरोवर का राजहंस कमल का मृगाल आस्वादन करने वाले ऐसे राजहंस जैसे संत महापुरुष हैं भी कभी कौए के तीर्थों में नहीं जाएगा। पारस तीर्थों में कौओं का मेला कहां लगता है, जहां सड़ा गला हुआ डस्टबिन है, गंदा चीज पड़ा हुआ होता है, वहां कौए कहां कहां लगे मेला लगाते। ऐसे संसार के लोग भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम को छोड़ करके उस कौए के मेले में बैठे हुए हैं, परंतु संत महापुरुष जैसे राजहंस है उनके चरणों में बैठने को सौभाग्य नहीं होता। वो राजहंस कौन जो दूध और पानी एक साथ में मिला दे, उसमें से दूध को पी जाए पानी को छोड़ दे। ऐसे जो लोग संत पुरुष संसार में रहते हुए भी किसी प्रकार विषयों में आसक्त नहीं, किसी में मोहग्रस्त नहीं और किसी में हाय हाय नहीं, सब मोह आसक्ति हाय सब कुछ छोड़ अनासक्त होकर भगवान के चरणों में मान प्राण हृदय समर्पण किया है। ऐसे महान के चरणों में आश्रय लिए बिना जीवों की कदापि कोई गति नहीं। इस संसार समुद्र में जहां आधी तूफान में नाव डमाडोल है, ऐसी स्थिति में क्या कोई स्थिर रहता है, कोई नहीं रह सकता। इसमें एक ही उपाय है, कोई बड़ा संधर्म का पालन कर रहा है, कोई घर गृहस्थी निभा रहा है और कोई नहीं निभा रहा है, कोई वर्णाश्रम धर्म को जाकर भी नहीं छोड़ दिया उससे बाहर, चाहे कोई भी व्यक्ति हो किसी भी स्थिति में हो, जब प्रभु का भजन करता है उनके चरणों में एकांत की भक्ति करता है उसके द्वारा वास्तविक कल्याण हो जाता है। जीवन में कोई पतन या विनाश या गिरना नहीं होता है। कोई गिरते हुए व्यक्ति भी भगवान के चरण कमल का एक बार भी आस्वादन किया, कोई संत पुरुष से भगवान के नाम का आस्वादन किया, कथाओं का आस्वादन किया, पुनर्विहारोजन ऐसे रसग्राही व्यक्ति कभी भी माया में फंस नहीं सकता। कदाचित किसी दुर्बलता के कारण कहीं गिर भी जाए तो भी गिरते नहीं, भीम भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान उन्हें चिदवल प्रदान करते हैं, गुरु पाद पद्मों से चिदवल प्रदान करते हैं। इस जन्म में या दूसरे जन्म में कभी भी निकल करके भीम से भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। पर जिसने भजन नहीं किया, बड़े भले भांति जीवन मरण का बाजी लगा करके 3 लाख कड़ी मेहनत के साथ संसार धर्म को निभा रहा है। यही मेरा पुत्र है, यही मेरे परिवार है, यही मेरा घर संसार है, यही मेरा कर्तव्य है। जीवन विसर्जन देता है, परंतु मिलता क्या? कुछ भी नहीं। सुन्न ग्रंथि अंचले बंधा, गांठ लगाया कपड़े में खुद देखा गया, कुछ भी नहीं। ऐसे ही जीवन भर संसार धर्म निर्वाह करके कुछ भी मिला नहीं, कोई सार तत्व है। इसलिए श्री नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी, अहम पुरातितो भवेत्, मैं पुरातन जी दासी पुत्र हो करके जन्म लिया। मेरी माँ दूसरों के घर में काम किया करती थी और मैं एक लोग का पुत्र था। एक समय चौमासे में चातुर्मास व्रत कहते थे, कुछ साधु लोग एक मंदिर में उपस्थित थे, वहां रह करके वे भजन पूजा पाठ आदि करते तथाओं का कीर्तन करते। मेरी माँ वहां पर पहुंची, वहां जाकर के चौथा बर्तन करना, बर्तन मलना और लेपा पोती पोछा इत्यादि लगाना सारा काम किया करते थे। एक दिन उन संतों ने प्रसाद पाया, पत्तल छोड़ कर गए। उस समय मेरी माँ ने उन पत्तलों से कुछ प्रसाद उठा करके मेरे मुंह में दे दिया। ये भी दिया, मैंने उस प्रसाद को खाया तो मेरा मन बदल गया। जो मैं बच्चों के साथ में खेलता था, इधर उधर दौड़ता भागता था, वो सब तो छूट गया। मेरा हृदय पवित्र हो गया, मेरे मन में एक अपूर्व भावना आ गई, साधु लोग क्या बोलते तो सुनने का मन हुआ। वहां बैठ करके सुनने लगा, सुनते सुनते धीरे धीरे मेरे समझ में भी बैठने लगा और उन कथाओं को सुन करके मेरे आंखों से आंसू छलकने लगा, भाव विकार आने लगा। इस तरह से चार महीना बीत चुका। ऋषि लोग जाते समय मेरे प्रति दया पर बस एक मंत्र दान करे, बोले कि इस मंत्र को तुम जपना, इसके जप करते ही तुम्हें सिद्धि होगी, भगवत दर्शन मिलेगा। इस प्रकार ऋषियों का आशीर्वाद था। जब वे लोग चले गए, मां के साथ में घर में रहा, उस समय मैं छोटा सा बालक मंत्र का जप करता रहा। पर एक दिन काल उपस्थित हुआ, मेरी माँ परलोक में चली गई, उस समय मैं अकेला हो गया। तब मेरा मन हुआ कि मैं घर से बाहर निकल करके चलूं। घर से निकल करके चलता रहा, कितने गांव, कितने नगर, कितने जंगल पार करते हुए एक खराब गुर्जर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। बैठ करके मंत्र जप करने लगा। मंत्र जप करते करते मेरे मन में यही हुआ कि प्रभु का दर्शन हमें मिल जाए। उस समय मैं झटपटाता हुआ प्रभु के लिए रोता रहा। श्री नारद जी कहते हैं, जब मैं रोता रहा कि प्रभु आप मुझे दर्शन दें, मेरी उत्कंठा की वजह से जब मैं ध्यान करने लगा, उनके चिंतन में डूबा रहा, ऐसे समय में भगवान श्री हरि शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए किए दिव्य चतुर्भुज स्वरूप में वे हमारे सामने प्रकट किए। उस समय उनके उस दिव्य स्वरूप को देखकर मैंने सिर झुका करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा। उस समय भगवान ने कहा कि हे नारद, मेरा दर्शन अतिव दुर्लभ होता है, परंतु तुम्हारी उत्कंठा, तुम्हारी आतुरता व्याकुलता, तुम्हारी जो भजन की जो एकांत प्रवृत्ति, इस कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिया। यह दर्शन इस जीवन में एक बार ही होगा, इसलिए तुम अति शीघ्र मुझे मेरे पास आ जाओगे। इसके लिए एक उपाय सबसे वया अधिक दीड़ा मई जाता, संत पुरुषों की सेवा, साधु पुरुषों की सेवा करने से हृदय मन चंचलता को छोड़कर स्थिर हो जाए। जब हृदय स्थिर होगा, मन स्थिर होगा, तब इधर उधर कहीं भागेगा। एकांतमति हो करके मेरे बीच में रहते हुए मेरे नामों का कीर्तन करते रहो। ऐसे कीर्तन करते करते अति शीघ्र मत जनता गंगा सी मेरा प्रिय परिकर बन जाओगे, मेरे निकट में आ जाओगे। इस प्रकार भगवान ने श्री नारद जी को ऐसे ऐसे उपदेश दिया। देखते देखते भगवान श्री हरि उनके सामने से हंसते हुए अंतर्धान हो गए। उस समय नारद जी बड़ी व्याकुलता में छटपटाते हुए फिर से भूलुंठित होकर जमीन गए। उन्होंने प्रणाम किया, प्रभु से बारंबार प्रार्थना की। उस समय उन्होंने नवानंदस्य हतत जप पठन भगवान श्री हरि के मधुर नामों का कीर्तन करने लगे। कृष्ण गोविंद मुरारी मुकुंद मधुसूदन आदि नामों का कीर्तन करते हुए विमतो विमत सर उन्होंने मद माश्चर्य अहंकार गर्व सदा के लिए विसर्जन कर दिया। दूसरों के लिए कौन क्या कर रहा है, दूसरों के लिए जलाशय जलन, ये सब माश्चर्य इत्यादि त्याग दिया। एकांत भाव युक्त होकर प्रभु के चरण कमल में पहुंचने के लिए प्रार्थना करते ऐसे श्री नारद जी उस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। कब वो समय आएगा जिस समय कि हम प्रभु के पास पहुंचे। प्रयुज्य वाणी मई त्वा शुद्धा भगवती करो आरब्ध कर्म निर्वाणो नपत पंच भोजी। श्री नारद जी कहते कहने लगे वैसे कि उस समय जैसे सबके लिए पाल वैसे ही नारद जी बोले कि हमारे जीवन में जैसे काल उपस्थित हुआ उस समय यह पांचवती शरीर यहां पड़ा रहा, इस पिंजरे में से वो चिड़िया निकल गई, अर्थात मैं उस शरीर में से निकल करके चला मेरा दिव्य स्वरूप बन गया शुद्धाम भगवती। वह भगवती तो शुद्ध ज्योतिर्मय दिव्य स्वरूप में मैं सीधा वैकुंठ लोक को चला। जब भगवान नारायण के समीप में पहुंचा, उनको जाकर के प्रणाम किया, तब भगवान श्री हरि श्री नारायण बड़े प्रसन्न हुए होकर के बोले कि नारद बड़े दिनों में तुम मेरे पास आए और मैं तुम्हें छोड़ कर तुम मेरे साथ नहीं रहेगा। ये लो यह देवदत्त नाम की बीना है, यह बीना मैं तुम्हें समर्पण करता हूं, इसी को बजाते हुए तुम मेरे नामों का कीर्तन कर मैं उसे सुनता हूं। इस प्रकार भगवान ने मुझको वो बीना दी जिसमें मैं बजाता हुआ कीर्तन करता हूं। आओ तो ये मैंने शीघ्र दर्शन जाते बिना निमंत्रण के कोई मानव निमंत्रित व्यक्ति आ गए अर्थात बिना बुलावे के ही स्वयं भगवान सामने आकर के उपस्थित हो जाते हैं। मैं प्रतीक्षा प्रति मुहूर्त उनको अपने निकट में देखता हूं और मैं जहां कहीं जाता हूं सर्वत्र प्रभु का नाम कीर्तन करता हूं। इस प्रकार जब इस सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने मेरे लिए चिंतन किया, उस समय मैं फिर से उनका मानस पुत्र होकर के आया, परंतु मैं ब्रह्मांड के बाहर भीतर सर्वत्र विचरण करता हूं। मेरे लिए न तो कोई बंधन, न तो कोई कष्ट, न तो कोई माया, न कोई संसार, कुछ भी नहीं रहा। उन्हीं के आदेश से सर्वत्र पृथ्वी में भगवान का गुणगान करता हुआ सभी को उपदेश सुनाता हूं। इसी प्रकार सभी लोग भक्ति के मार्ग में प्रवेश करके भगवान के लोक को गए, इसलिए हे व्यासी हे पराशर नंदन एक ध्यान चित्तारम मत्त स्पर्श छाया हो भव सिंधु प्रवदेश हरि चर्चा भय। जो संसार में आतुर है, कैसे आतुर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग शोक सुख दुख लाभ लाभ जय पराजय मान अपमान जस अपजस इस इनमें पड़े थे, कभी हंसते हुए कभी रोते हुए व्याकुल हो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, भूले भटके हुए। तो इस प्रकार भव सिंधु प्रबोधिष्ट ऐसे संसार समुद्र से पार होने के लिए एक ही उपाय हरि चर्या वर्णन, भगवान श्री हरि के गुणगान, उनके मधुर नामों का कीर्तन, उनकी कथाओं का श्रवण, इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। लोग जवादि बीजम जवादि बीज योग पथे काम लो हतो मोह मुकुंद सेवया जदव तथा आत्मा दशा होगी। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग लोग योग मार्ग में ध्यान लगाने में फंसे थे, पर तो किसका ध्यान लगाएंगे कुछ बताइए, केवल बिंदी का या शुक्ल का या ज्योति का ध्यान लगा रहे, परंतु उसे कुछ भी नहीं मिलता। श्री नारद जी महाराज कहते हैं उससे हृदय में शांति नहीं, नहीं वास्तविक कल्याण, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद वात्सल्य ये षड् रिपु है, छह शत्रु हैं, हम सबके जीवन के शत्रु ये छह हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि हे अर्जुन, काम ये सब क्रोध ये सब रजो गुण समुद्भव, ये काम क्रोध लोभ मोह ये सभी रजो गुण और तमोगुण से आता है, ये वहां भयंकर अंधकार स्वरूप और सबके जीवन के शत्रु हैं। हम उन्हीं का ही सेवक बन करके दिन रात उस काम क्रोध की सेवा कर रहे, इसलिए कोई भक्त ने कहा कामादी नाम कति न कति था पालिता दुर्निर्देशा, काम क्रोध लोभ मोह की हमने कितना आदेश निर्देश पालन किया जिसकी कोई ठिकाना नहीं, जीवन भर उन्हीं की सेवा में हम लगे। परंतु ये जनपदे सांप्रदाम लब्ध बुद्धि आपके अनुग्रह से गुरु की कृपा से अब बुद्धि लाभ हुआ है, इसलिए इस सब को छोड़ करके हम आपके चरणों में स्वागत हैं। नारद जी महाराज कहते हैं मुकुंद सेवया जनम तथा धात्मा नशा, भगवान मुकुंद की सेवा के द्वारा जैसे आत्मा की शांति मिलती है और किसी भी उपाय से नहीं, जितना भी उपाय है सब चिटिकबाजी है, सब ठगबाजी है, अभी भी उसमें शांति नहीं है, इसलिए दूसरे दूसरे मार्गों में कभी भूले भटके हुए भी नहीं जाना चाहिए। संसार में लोग कितने कितने मधु पुष्प बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लुभावनी बातें करते हैं, भुलावे करते हैं, परंतु उसमें कभी भूले नहीं, उसमें कभी मुक्त नहीं हो, कभी भी किसी की बातों में नहीं आना है। नित्ता भागवत श्रेणिया आदेश वाक्य है कि नित्य ही भागवत का श्रवण करें, क्यों श्रीमद् भागवत तीन स्वरूप में शुभ बताया गया था, जो कि भागवत श्रुति के रूप में माता है और पुराण के रूप में महापुराण के रूप में सखा के रूप में बंधु के रूप में और भागवती संगीत प्रिय सखा बंधु के रूप में हितकारी उपदेश, प्रिया के रूप में प्रिय वचन के द्वारा यही निर्णय दिया भागवत कथा का श्रवण करें और कुछ नहीं, और इसी को ही जीवन में उतार ले, इससे ही कल्याण होगा। इसलिए हे व्यासी, भक्ति जो समाधि में बैठकर आप भागवत रहस्य को प्रकाश कर, अभी अभी गुरु जी ने वर्णन किया है श्रीमद कृष्ण देवी, जो वेदों के विस्तार करने वाले, जो व्यास नारायण स्वयं नारायण व्यास रूप में अवतरित हुए, जीवों को क्या किया, समस्त शास्त्रों का सार स्वरूप नारद जी के उपदेश से उन्होंने भक्ति योग समाधि में बैठकर समस्त शास्त्रों का सार स्वरूप श्रीमद भागवत पुराण सूर्य को प्रकट किया, भगवान की मधुर लीलाओं को दर्शन किया, भगवान के अवतार भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम, उनके प्रिय परिकार, उनकी प्रेममयी लीलाएं, सभी कुछ उन्होंने दर्शन किया। जो दर्शन किया उन्होंने समाधि भाषा को समाधि में स्थित होकर के उनको व्यक्त किया, इसलिए भागवत उनके कोई मस्तिष्क का उपज नहीं, किसी ऋषि महर्षियों के वाक्य नहीं, उपदेशावली नहीं, यह तो उनकी समाधि भाषा है, इसलिए भागवत को समाधि भाषा कहेंगे। और इस श्रीमद् भागवत को प्रकट करते हुए कहा था, श्रवण करने से समस्त प्रकार शोक मोह भय सब कुछ विदरित होता है। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम अहेतु की अनन्य भक्ति होती है। इस भक्ति के होने से हृदय में शांति मिले और भगवान श्री हरि प्रसन्न होते, इसलिए इस श्रीमद् भागवत को कृत्वानुक्रमचात्मज जो कि उन्होंने धीरे धीरे किसको बढ़ाते गए। अब यदि गुरु जी ने कहा सर्वप्रथम श्री व्यास जी ने 18 पुराणों की गिनती में चतुष्पदी भागवत को आगे पीछे कुछ श्लोक जोड़ करके आप पुराण श्रीमद् भागवत को वर्णन किया, परंतु व्यास जी के उपदेश के पश्चात उन्होंने समस्त अखानों पर खानों को जोड़ करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ को बनाया। फिर अपने पुत्र श्री सुखदेव जी, जो कि जीवन मुक्त चतुर्दशी के विषय में आपने अभी श्रवण किया, ऐसे सुखदेव जी को जिन्होंने कृपा बार-बार होकर उन्हें भगवान के गुणों के द्वारा आकर्षित कर लिया, निर्ग्रंथ अपूर्व क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थं भूत गुणोत्तरी। भगवान श्री हरि का अद्भुत गुण, ऐसे अद्भुत गुण जिन गुणों के द्वारा सभी को आकर्षित कर लेते। जब श्री सुखदेव जी ने भगवान के मधुर रूप का श्रवण किया, बड़े आनंदित हुए, बड़े प्रसन्न हुए, फिर भी खींच के नहीं आए। जब भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन श्रवण किया, सुनते ही तत्क्षणात् वे आकर्षित होकर दौड़ के आ गए। आत्मा रामस्य मुनय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, जो कि आत्मा राम श्री सुखदेव जी महाराज अपने में रमन करने वाले, अपने में खोए हुए और जिनको संसार से किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की आवश्यकता, और भगवान ने जो इस प्रकार आत्मा रामस्य मुनय मुनि जो मननशील चिंतन मनन पर है, नीर ग्रंथा जिनका कोई गांठ नहीं थी, अर्थात संसार संसार बंधन नाम का कोई चीज है ही नहीं। जीवन मुक्त पुरुष निर्ग्रंथ और कोई विधि निषेध नियम कानून उनके लिए है कुछ भी लागू नहीं होता है। और भी कहा है निर्ग्रंथ जिनको कोई ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ऐसे श्रुते जी भगवान श्री हरि के गुणों में आकर्षित होकर के आ गए। व्यास जी के छोरों में गिर पड़े, अपने सारा भक्ति के द्वारा समर्पण कर दिया कि गुरुदेव आप मुझे भागवत कथा भगवान की अपने स्वयं वाणी श्रवण कराए। जब उस कथाओं को सुनने के लिए लालायित हुए अति उत्कंठित, उस समय व्यास जी ने उनको एक अध्यगान महद अर्थान नित्तम विष्णु जनम, इतने बड़े विशाल ग्रंथ 18,000 श्लोक समन्वित संपूर्ण श्रीमद् भागवत जो कि उन्होंने सुखदेव जी को श्रवण करा दिया, श्री सनातन गोस्वामी का श्री वल्लभाचार्य उन्होंने भी वर्णन किया कि कितना श्री सुखदेव जी को अध्ययन कराया था, कितना ग्रंथ बोले संपूर्ण जनमानस से लेकर के संपूर्ण भागवत उन्होंने बना दिया। क्यों? भविष्य में होने वाले जो वार्ताएं हैं शुभ परीक्षित संवाद शुद्ध सौरभ संवाद ये सभी अंतर्यामी सूत्र में उन्होंने सभी कुछ दर्शन कर दिए थे, इसलिए संपूर्ण भागवत उन्होंने बना दिया। सुखदेव जी को अध्ययन कराते रहे, वही कथाएं वही प्रसंग कथा।
इस प्रकार दो मिनट कीर्तन कर दो, दो मिनट कीर्तन कौन कीर्तन कर दो, दो मिनट तुम कुछ लोग सो रहे हैं, सोना नहीं चाहिए और हरिनाम भी नहीं करना चाहिए, एकांत मन से माला रख करके सुनो।
जय जय श्री राम।